है तो इसका मतलब यह है कि आपने सब ठीक नहीं किया, आपने भक्ति तौर से टाइम टाइम पर अरेंजमेंट कर किया और उसके ऊपर मट्टी डाल दी आपने।
सही सही।
असल मसाइल को जो है हल करें, क्योंकि ये देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई जो है पूरे मुल्क को खाए चली जा रही है, कश्मीर के अंदर आप वो कश्मीरी जो आपके लिए जो है जान देने को खड़े होते हैं, चकोटी से लेकर मैं कश्मीर के जितने सरहदी इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बहुत सारे देखे हैं, आप देखिए कि लोग ऐसे ऐसे हैं कि जिनके घरों के ऊपर गोलाबारी इंडिया की तरफ से होती है और वो बेचारे फिर वहां रहते हैं, ठीक है। उनको तो आप मतलब किसी किस्म का क्रेडिट या किसी किस्म का इतराब उनकी खिदमात का करने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ आप ये करते हैं, फिर तीसरी तरफ ये भी है कि भाई अगर इतना ही है आपको तो आप अपना पासपोर्ट क्यों कश्मीरियों को मतलब क्या देते हैं, उसी तरह से आप उसका कुछ और इंतजाम करें। बात ये नहीं है कश्मीरियों के, देखिए उनके मुतालबात जायज हैं या नाजायज उसमें उलझे बगैर मैं ये कहता हूं कि आप डायलॉग क्यों नहीं करते, क्या ये जो मतलब कमेटी है क्या इतनी पावरफुल और इतनी मुसल्ला है, उनको भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए। लेकिन बात तो यह है कि आप अपना वादा करने के बजाय आप सिर्फ टाल मटोल की पॉलिसी रखते हैं, वक्ती आपकी सियासी मसलतें होती हैं, जब वहां पर हुकूमत बनाने का वक्त आता है सारी पार्टियां आगे अपने अपने प्राइम मिनिस्टर होने के जो हैं वो कैंडिडेट खड़े करती हैं।
बहुत शुक्रिया मियां साहब। ये
इसलिए कि आम कश्मीरी का खून भी जो है वो उतना ही महंगा और उतना ही कीमती और उतना ही काबिल एहतराम है जितना किसी और इंसान का है।
बहुत शुक्रिया।
वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, आप उनके साथ यहाँ तो फिर अगर आप ऐसा करें आप वहाँ रेफरेंडम करवा लें और रेफरेंडम में देख लें कि भी ठीक है अगर वो माइनॉरिटी में ठीक है, उसके लिए फिर पावर की भी जरूरत नहीं है, आपको रेफरेंडम की जरूरत है। आप बिला वजह वो मसाइल खड़े कर रहे हैं कि ताकि लोग महंगाई और दूसरे मामलात जो है इस पर हुकूमत को क्रिटिसाइज न करें और वो सिर्फ डाइवर्ट होकर बात करते रहे, ये तरकीब और ये डिप्लोमेसी ये स्ट्रेटेजी जो है ये अच्छी नहीं है। नतीजा ये है कि जो भी हुक्मरान है आज की हुकूमत हो माजी की हुकूमत हो इन्होंने क्या किया। फिर सबसे बड़ी बात मेरा एक सवाल है कश्मीर के मामले में कि जब आपने ये कश्मीर का ये हिस्सा लिया तो आपने इसको जन्नत नजीर क्यों नहीं बनाया, आप इसको इतना मिसाली बनाते कि बाकी जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो इधर आने को तरसते, वो इधर आने को आबाद होने के लिए करते। अब देखिए लोग अमरीका में आते हैं ना, कभी मैक्सिको के रस्ते आता है, कोई कहीं से रस्ते से आता है, क्यों कि अमरीका खुशहाल है। आप भी अपने कश्मीर के इस खिते को आप बनाते, उस वक्त तो आपने ये किसी हुकूमत ने ये तवज्जो नहीं दी, चाहे वो अयूब खान की हुकूमत हो और चाहे वो जनाब अली आज की हुकूमत हो, उस वक्त से तसलसल के साथ मैं किसी एक हुकूमत की जो है ना उसको जिम्मेदार इसलिए नहीं करार देता हूँ, लेकिन इस वक्त जो वाकया है उसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की।
बहुत शुक्रिया मियां साहब ने
इस बात का ख्याल इनको रखना चाहिए कि लंदन अमेरिका, मैं इस वक्त भी जिस आपसे जो बात कर रहा हूँ उस इलाके से कर रहा हूँ जहाँ मीरपुर के कोटली के यानी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों की आबादी कम अज कम 40 से 50 हजार है। आप उनके नुकता नजर को सुनिए, उनके नुकता नजर को समझिए। लंदन में बरतानिया में कश्मीरी जो है वो वहां की जो मुल्की सियासत है इंटरनेशनल सियासत है उसके अंदर उन्होंने कदम रखा हुआ है और अपनी मतलब के कामयाब है। इन आवाजों को आप कैसे दबा सकेंगे, इन आवाजों को खाली गुमराह कह के आप नहीं मतलब निकल सकते। आप तबलीग करें, आप डायलॉग करें, आप पुरअमन तरीके से करें, उनको भाई समझें, अपने साथ बिठाएं तो फिर बात होगी। ये तो कोई बात नहीं है कि भाई आपने किसी को दुश्मन करार दे दिया तो मुल्क दुश्मन भी हो गया, वो कानून शिकन भी हो गया, फलां भी हो गया फलां, ये वजीफेबाजी हमें पाकिस्तान में बंद करनी पड़ेगी।
मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और यकीनन कश्मीर के हवाले से अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान, पता नहीं
ख्यालात मेरे हैं लेकिन इसका वजन जो है वो तुम्हें भी सहना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, इख्तलाफात से निमटने का कोई प्रॉपर तरीका कार होना चाहिए।
नहीं, नहीं, नहीं,
बार बार गलतियों को दोहराया जा रहा है पाकिस्तान।
उसकी वजह यह है कि यहाँ की कम्युनिटी जो है माशाल्लाह बाशऊर भी है कनाडा अमेरिका की और इनको पता होने का यह है कि जब हम यहाँ आने के बाद माइनॉरिटी होकर भी हम बराबर का हक मांगते हैं तो ये बड़ी मुतजाद चीज होगी कि हम वहां पर जो है दूसरों को सिर्फ इसलिए उनके हुकूक से इनकार कर दें कि मेरे पास पैसा आ गया है या मेरे पास इख्तदार आ गया है या वो है। ये जितने लीडर आते हैं, जितने आपके पाकिस्तान से जो लीडर आते हैं, जब यहाँ आते हैं तो हमें तबलीग करके जाते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में ये खिदमत अंजाम दें। मैं पूछता हूँ कि आप अपना अपना सरमाया पहले डिक्लेयर करें कि आपने पाकिस्तान से बाहर जो रखा हुआ है वो पाकिस्तान की जरूरत है, आप ला के रखिए वापस। जो भी उसमें लीडर है, ये नहीं मैं कहता कि एक आध हो, सबने माशाल्लाह वर्जीनिया में कोठियां खरीदी हुई हैं, सबने कनाडा के अंदर जनाब ने इमिग्रेशन दिए हुए हैं, सबने कनाडा के पासपोर्ट उठाए हुए हैं, अमेरिकन पासपोर्ट उठाए हुए हैं, लंदन के पासपोर्ट उठाए हुए हैं और कोशिश करते हैं कि वहां जाके आबाद हो जाए। तो फिर उसके बाद दूसरों को जो है वो सिर्फ उबुल वतनी के नाम पर ना गोलियां चलाना, अमन शिकनी या किसी को ये खाली गद्दार करार दे देना, ये जो है ये मुनासिब नहीं। गद्दार को आप गद्दार साबित करके आप उसको सजा दें।
बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपका ढेर सारा टाइम लिया और मैंने ये मान है, मेरा भी मान है और लोगों की मोहब्बत भी है आपके ऊपर।
आपके चुपते सवाल आप जो है वो मुझे मुश्तैल कर देते हैं।
आई लव यू मियां साहब, आपका एहसान मंद हूँ मैं, बहुत एहसान मंद हूँ कि आपने टाइम दिया, असि तुहानू टेक्नोलॉजी सिखाने की पूरी कोशिश की थी।
आज कीमत अदा करूंगा।
आई लव यू, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू सो मच,
बहुत शुक्रिया,
बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, और आपका और आपके स्टाफ का भी बहुत शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है यास्मीन तैयब भी मेरे साथ हैं। यास्मीन जी आप मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, हमें पूरी गुफ्तगू सुन रही थी और जी बहुत ही क्या कहूँ मैं,
दुख का मामला है।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इस वक्त जो है बात कर रही हूँ क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से कुछ एक्सप्रेस एंट्री में तब्दीलियां आने वाली हैं और जो इमिग्रेशन के,
मैं यास्मीन तैयबी आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। यास्मीन तैयबी आई नो हर फॉर 28 इयर्स, 28 साल, ये बहुत लंबा रिश्ता होता है। इमिग्रेशन के हवाले से ही अपनी लॉ फर्म के साथ यास्मीन हमारे साथ रही एंड दिस इज अनइंटरप्टेड। अब पिछले दरमियान में इंटरप्शन आई थी, वो भी ये कि यास्मीन इज वेरी मच कमिटेड इन उर्दू ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन में, कोर्ट में, क्योंकि अदालत में काम कर रही है। तो यास्मीन तैयबी, शी डज इमिग्रेशन, लुक आफ्टर इमिग्रेशन मैटर्स। आपने शादी हुई है आपकी, आपने किसी को स्पॉन्सर करना है, विजिट वीजे की जरूरत है। यास्मीन तैयबी 9055130012513-0012. यास्मीन अब आप बताइएगा, आजकल ज्यादा मसला आप इमेजिन कीजिएगा कि ट्रूडो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की ज्यादतियां और हाथों की दी हुई गिरे दांतों से निकल रही। आप सोचिएगा कि पहले तो इतने इमिग्रेंट्स बुला लिए, उसके बाद फिर उनको निकाल दिया, रेंट की प्राइस कम गई, घरों की मार्केट डाउन गई, इंडिया से बेशुमार और दूसरे ममालिक से ऐसे लोग भी आ गए जो फ्रॉडस्टर हैं। अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रैक्शन थेफ्ट में है, देर आर पीपल हु कम टू कैनेडा ओनली फॉर चोरी। तो मगर देर आर वेरी मेनी स्टूडेंट्स, मेरे अपने ऑफिस में एक स्टूडेंट है, इस बच्चे ने रज के मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, लर्न किया है, मगर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इज अ प्रॉब्लम। कैन यू हेल्प अस कि स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल है एंड व्हाट आर द न्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इमिग्रेशन?
जी बिल्कुल आरफा, एक सेकेंड, ये मेरा अलार्म इसके बाद पता नहीं क्यों ऑन हो गया, होल्ड कीजिएगा। ओके बंद हो गया। तो ऐसा है कि अभी जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के, उन्होंने कुछ आने वाली तब्दीलियों के बारे में जिक्र किया है। इसमें जाहिर है कुछ स्टूडेंट्स भी इससे मुतासर होंगे जो नई तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा वक्त लूंगी। एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोग्राम है उसकी पिछले अप्रैल से कोई भी ड्रॉ नहीं हुई है। इसका मतलब है जो बाहर जो लोग थे उनकी कोई ड्रॉ हुई ही नहीं है, और जो अंदर जो लोग हैं, जो जैसे कि आपने बोला, मुझे पता है बच्चे का जिक्र कर रही है, मेरी उससे बात हुई भी है नफीस से, तो जी हाँ, तो उस तरह के हजारों लोग हैं जो कि जिनके लिए पीआर अप्लाई करना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि स्कोर बहुत हाई हो गया है। ठीक है, तो अभी जो उन्होंने कुछ तब्दीलियों का जिक्र किया है जो अभी पक्की नहीं है, हो सकता है कि वो पक्की हो जाए, या अभी सिर्फ तजावीज हैं और ये उन्होंने सिर्फ अभी ये हल्का फुल्का खाका सा पेश किया है। तो प्लीज जो भी मेरे सामने सुन रहे हैं इनको ये ना समझें कि पक्के तौर पर ये चीज अब लागू होने वाली है, ये सिर्फ तजावीज हैं और इनका इतलाक जो होगा वो अक्टूबर नवंबर से लेकर 2027 तक में ये इस चीज को वो पूरा करेंगे। तो तब्दीली क्या आ रही है? तब्दीली ये है कि पहले तो तीन प्रोग्राम होते थे जो एक्सप्रेस एंट्री में, और एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली कंट्रोल करने का एक समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो बाहर जो बच्चे हैं, बाहर से जो आने वाले लोग हैं, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम और कनेडियन एक्सपीरियंस जो प्रोग्राम है वो, और जो है स्किल ट्रेड प्रोग्राम, तीनों की अलग अलग ड्रॉज जैसे होती थी, राइट। तो अब इन्होंने क्या इरादा किया है कि इनको दोबारा से एक करते हैं, जो कि पहले होता था, जो मैं 1995 से ऑलमोस्ट 2014 तक करती रही, यही मेरा ब्रेड एंड बटर था, मेरा ही नहीं और जितने लॉयर्स थे कंसल्टेंट्स थे ये उनका मेन बटर ब्रेड एंड बटर था, वो इन्होंने अलग अलग करके उसको अलग अलग तीन चीजों में तकसीम कर दिया। अब सुनने में ये आ रहा है, बल्कि उन्होंने तजवीज ये पेश की है इन तीनों को एक जगह जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें की रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर एक, सब में लाजमी 6 CLB की जो है IELTS वगैरह की रिक्वायरमेंट है, स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन सब चीजों में 6 चाहिए होगी, हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होगा या एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो WES ICAST से मिलता है, और एक साल का जो ऑक्यूपेशन होते हैं क्लियर कहलाते हैं 0, 1, 2, 3 वगैरह, तो 0 से 3 ऑक्यूपेशन में काम का तजुर्बा पिछले 3 सालों में 1 साल का। तो ये चीजें अभी इन्होंने तजवीज पेश की है, और स्कोरिंग क्या होगी, जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है इंग्लिश के लिए, इसका हाई इंग्लिश चाहिए जो मैंने अभी बताया, CLP 6 चाहिए होगा, और अगर उनको LMIA या जॉब ऑफर मिलता है तो वो हाई वेज वाले, यानी कि जैसे डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट है, हाई वेज वाले लोगों को ही कर रहे हैं। नुकसान में कौन आ रहा है, जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन आई होप कि ये इसको लागू ना करें, मेरी उम्मीद यही है कि इसको लागू ना करें। सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो तालिब इल्मों को, क्योंकि ये तजवीज पेश की जा रही है कि जो कैनेडा में स्टूडेंट्स ने तालीम हासिल की है उनको इसके नंबर ना दिए जाए एजुकेशन के, वरना अभी तक क्या हो रहा है, अभी वो सिस्टम लागू नहीं हुआ, अभी पुराना चल रहा है, उसमें आपको एजुकेशन के भी पॉइंट मिलते हैं, अपने स्पाउस के भी पॉइंट मिलते हैं, राइट, बहन भाइयों के भी पॉइंट मिलते हैं, और वो तीनों पॉइंट को खत्म कर देंगे। यानी जो यहाँ पे बच्चा हजार डॉलर खर्च करके इतनी मेहनत से उसे पढ़ाई की, घर रेंट पे लिया, ये वो आपको आपने भी जिक्र कर ही दिया, आप सोचे इतनी मुश्किल के बावजूद, अब आप ये सोचेंगे जब वो PR अप्लाई करेगा तो उसको ना, अगर वो शादीशुदा है तो उसको स्पाउस के पॉइंट नहीं मिलेंगे, उसके अगर बहन भाई हैं उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे, और अगर उसकी यहाँ पे तालीम उसके लिए जाहिर है तालीम के लिए आया है उसके पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मेरी बात को भी पक्का ना समझिएगा, ये तजावीज हैं, और ये अभी मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 28-29 तारीख को, हमारी एसोसिएशन ने मिनिस्टर को बुलाया था, वो खुद आए थे और उन्होंने यही सारी तजावीज पेश की, और मुझे ये था कि जब मैं अपने सामने के सामने बात करूंगी तो मेरे सामने कुछ चीज हो सॉलिड जिसके लिए मैं बात करूं, तो ये अभी सिर्फ उन्होंने यही कहा, खाका है, तब्दीलियां हो सकती हैं, अभी वो लोगों से भी मशवरे ले रहे हैं, अभी इंडस्ट्री के लोगों से भी, स्टेक होल्डर से भी, लेकिन ये उनके इरादे हैं जो मैंने अभी पेश किए हैं। और अंदाजन कब शुरू होगा, मैंने बता दिया कि लेट 2026 से अर्ली 2027 तक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्होंने स्पाउस और कनेडियन एजुकेशन या बहन भाइयों के जो पॉइंट्स निकालें, आई होप कि ना निकालें, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और सवाल भी इसी सिलसिले में हुए कि ये तो काफी जुल्म होगा इन स्टूडेंट्स के साथ, तो इंशाल्लाह देखिए क्या होता है ये। लेकिन
यास्मीन, मेरा दिल चाहता है कि प्लीज आप हमारे साथ इसके बारे में डिटेल में प्रोग्राम करें, और अगर आप किसी स्लाइड शो के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो लोग सफर कर रहे हैं वो बहुत बुरे तरीके से सफर कर रहे हैं।
मुझे आरफा जी, आप यकीन करें कि ना मैंने कई सालों से, जब से कि स्कोर 500 से ऊपर चला गया, मैं तो मेरे पास जो भी आते थे, क्योंकि रिश्तेदार रिफर करते थे मुझे, आपको पता ही है माशाल्लाह इतने प्यारे हमारे सामईन हैं, उनके रिश्तेदार मुझे फोन करते थे या उनके जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो मुझे पूछते थे, मैं सबसे कहती थी आई एम सो सॉरी, कितनी उम्र है 38 साल, आई एम सो सॉरी, कितनी उम्र है 40 साल, आई एम सो सॉरी। तो मैं जो मैंने बीच में जो आपने जिक्र किया ना, मैंने रोका था, आप यकीन करें मैं इनकार कर करके मैं शर्मिंदा होती थी कि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं कह रही नहीं कुछ नहीं है, तो वो कहते थे फिर आप जिक्र क्या रही है अगर आपको सिर्फ इनकार करना है। लेकिन इस दौरान बेईमान लोगों ने बहुत पैसे बनाए, उन लोगों के भी प्रोफाइल बनाए जो पता था आने नहीं वाले,
और उन्होंने फिर मरवा भी दिया ना, तो आज की जो नतीजा है उसी का तो नतीजा निकल रहा है ना।
जी हाँ बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखिए, अगर कोई और नई ताज़ा तरीन तब्दीली या कोई अपडेट्स आई अरफा, मैं आपके सामीन के साथ शेयर करूंगी जरूर। और लाइक मुझे अफसोस है कि स्टूडेंट्स वाली बात पे कि ये तजवीज भी उन्होंने क्यों पेश की कि स्टूडेंट्स के जो पॉइंट्स है स्टडी इन कैनेडा के वो या स्पाउस के या बहन भाइयों के, ये तीनों चीजें बहुत तकलीफ दें उन लोगों के लिए जो बेचारे इतनी मेहनत करके यहाँ पे इतने पैसे खर्च करके, किसी ने अपनी जमीनें बेची, किसी ने अपने घर बेचे, किसी ने माँ बाप ने रह लिया। सो इट्स अ टेरेबल सिचुएशन, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि लोग इसके खिलाफ जो स्टेक होल्डर्स है वो आवाज उठाएंगे।
और वी विल डेफिनेटली टेक इट, आपको दोबारा हम एयर पे लेके वी विल डेफिनेटली अनाउंस इट, ताकि हम उसी लिहाज से इसको दोबारा भी कवर कर सकें। अपना नंबर दीजिए यास्मीन
जी, 905-513-0012, 905-513-0012।
इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज। यास्मीन तैयबी का नंबर आप नोट कर लीजिए, 905-513-0012। एक अनाउंसमेंट करते हुए आई एम रियली सैडेंड, मैं बड़े गम के साथ ये अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, और ये मुझे पुलिस डिपार्टमेंट रीजन ऑफ पुलिस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मार्कम मैन अरेस्टेड फॉर यूजिंग सोशल मीडिया टू सेक्शुअली लर द नौजवानों को जाल डालने पे या उनको बेट करने में इस्तेमाल किया इस शख्स ने। और मैंने जब नाम इसका शेयर करूंगी तो ऑनेस्टली मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। लुक एट दिस मैन, इलियास इसका नाम है, मार्कम का ये रहने वाला है। इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द इंटरनेट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो आइस का यूनिट है उसने अरेस्ट किया है इस लड़के की उम्र, जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं इस लड़के की उम्र 24 साल है, मार्कम का है, ऑनलाइन चाइल्ड लर्निंग ऑनलाइन, और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करता था, स्नैपचैट को, इंस्टाग्राम को और वगैरह वगैरह को। अब वो ये कहते हैं कि मल्टीपल सोशल मीडिया को इसने इस्तेमाल किया नौजवानों को फंसाने के लिए। मेल अपने आप को जाहिर करता था, अपने इमेजेस को शो करता था बच्चों को सेक्सुअल पर्पस में इन्वॉल्व करने के लिए। और ये शख्स है, इसका नाम है इलियास किशवान, इलियास किशवान ऑनलाइन चैट विद द विक्टिम्स ऑन मार्च 26, 2026। और ये डाउटेड इलियास तो मुस्लिम नाम है। इसका नाम है मोहाना तस, वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज विद द फॉलोइंग। आई डोंट नो क्या इसकी है, मगर देसी कम्युनिटी का ये ब्राउन स्किन के साथ इलियास किशवान द एक्यूज्ड यूज्ड द इलिया। अच्छा, इसने अपना नाम इलियास किशवान इस्तेमाल किया। द एक्यूज्ड यूज्ड द इलियास किशवान ड्यूरिंग हिज ऑनलाइन चैट विद द विक्टिम। अपना नाम इलियास किशवान यूज किया, हालांकि इसका नाम इलियास नहीं है, इसका नाम है मोहनातस, इसका नाम है। इसको अरेस्ट किया गया है 18 और 16 साल के बच्चों को करने में। ही इज नॉट मुस्लिम बट ऑफ कोर्स ही इज मोहनातस, इसका नाम है, इसको अरेस्ट किया गया है। बहरहाल अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। इट्स वेरी सैड 16-17 साल के बच्चों का। मेरा एक पाकिस्तानी है जिसको पुलिस ने किया, उसने एक मस्जिद चर्चित भी खोली है मोनो के इलाके में, उसको नहीं मिल रहा। और मजे की बात है, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये खुदा बना के इनको चली फिर रही हैं, बिकॉज मनी टॉक्स वाली बात है, पैसा। वो यहाँ पान शॉप है, पान शॉप में वो काले रंग की चर्स और एफ्यून और इंडिया से वो गोलियां जो एक दवाई बैन है वो नशे की हैं, वो पान की दुकानों पे बेची जा रही हैं। और आप लोग कहते हैं कि फिर हमारे लीडर्स को आप बुरा ना कहें। एनीवेज, टॉप ऑफ द आवर के चंद कमर्शियल्स एंड विल कम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
अच्छे हमसाए ही मजबूत कम्युनिटी बनाते हैं। आइए इस सीजन में मिलकर अपने शहर ब्रैम्पटन को महफूज, साफ और खुशामदीद बनाएं। अपने घर के बाहर सफाई का ख्याल रखें, गैर जरूरी शोर से गुरेज करें और फुटपाथ और बाइक लेन्स को साफ रखें। कचरा मुकर्रर जगह पर फेंकें, अवामी या निजी जगहों पर गैर कानूनी डंपिंग ना करें। और याद रखें, सड़क पर पार्किंग सिर्फ 3 घंटे के लिए है, जबकि रात 12 से सुबह 2 बजे तक पार्किंग ममनू है। आपके ये छोटे इकदाम हमारे शहर में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें brampton.ca/bylaws।
10 मीटर बस इन्ना को याद रखो, तुहानू उपरों लंघ दियां बिजली दियां पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 मीटर दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन, अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ, ਮੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਸਕਾਰਪੁਰੋਂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਗਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਪੁਰੋ, ਮਾਰਗਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਫੋਨ 416-264-3111।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है,
मेरी सेविंग $350
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $2000।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशप, 647-290-3773।
Petro Canada pesh karde Juron heavy duty diesel engine oils hun full service sailing style, 10W30 synthetic $20 discount, 5W30 $40 discount, offer limited time lay, 5W30 quick start aur oil flow thande mausam vich jeetu, 10W30 engine di karguzari nu banaye rakhda, QTL di 3 locations te pujo aur laab chakko, exit 268 Cambridge, exit 579 Napanee, exit 5 Fort Erie, Petro Canada aur UTL, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਨੂਠਾ ਸਾਕ।
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ, 9058747171।
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा, वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड, नो रुकावट। सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उम्रे के लिए, वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं। घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
ट्रक सर्विसिंग खेतर विच ओंटारियो दा मोहरीना क्विक ट्रक ल्यूब, तुसी एक ट्रक चलाने जा फ्लीट हैगी जे, तुहाडा टाइम वैल्यू रखदा, अपॉइंटमेंट दी लोड नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस राही बेस्ट हाई ग्रेड ऑयल्स फिल्टर्स, इंजन दी जान बदाउंदे, होर की चाहिदा। तीन लोकेशन तो तुहाडी सेवा करदे, QTL, एग्जिट 268 हाईवे 401 कैम्ब्रिज, एग्जिट 579 हाईवे 401 नैपनी, एग्जिट 5 QEW फोर्ट एयरी। सर्विस और क्वालिटी विच सब तो प्रमुख ना, QTL 5196220660, जो आवे सो राजी जावे।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 years ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन।
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
Caledon Sabzi Farm, Airport Countryside, Caledon. Har tarah di sabzi, mirchan, kaddu, karele, pindi, tinde, gol, kaddu, bengan, tamatar, pyaz. Har tarah di paneeri, sabzi kar di te bachat begam sahibadi. Etto ilawa fruit trees, organic khad, sheep manure, cow manure, aur har tarah de gardening tools. Indian tandoor, charpai, moode, manje, taza taza roti. 12050 Airport Road, 9058409.
कोई मांगे मीठा कोई कहे नमकीन एक बात तो पक्की है
कि सब है इसके शौकीन ये है राजधानी राजधानी राजधानी
राजधानी स्वीट्स ये सचमुच है स्वाद की राजधानी खुद आइए दोस्तों को भी लाइए
ये है राजधानी राजधानी राजधानी
Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
ब्रैम्पटन में जून का महीना है बाइक मंथ अपने खानदान और दोस्तों के साथ साइकिलिंग के मजे लें और एक सेहतमंद फाल तर्ज जिंदगी को फरोग दें कम्युनिटी राइड्स में 2, 6, 16 और 21 को शामिल रहें जबकि 13 जून को बाइक द क्रीक इवेंट का हिस्सा बनें महीने भर जारी दीगर साइकिलिंग सरगर्मियों के बारे में जानने के लिए विजिट करें brampton.ca/bikemonth
हेलो एंड वेलकम और हम सोचते हैं कि आप सब ठीक होंगे अभी गर्मियां थोड़ी अच्छी आ गई हैं तो गर्मियां जितने दिन हैं उनका मजा ले लें शिकायत मत करें कि हमें बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि उसके बाद बहुत सर्दी लगने वाली है लेकिन आज जो है गर्मी भी है और जिस स्टार के बारे में भी हम बात करेंगे वो उसने बहुत हीट बढ़ा के रखी हुई है और जिस तरह का वो स्टार है उसका जब आप नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है और आप कहेंगे कभी सोचेंगे वैसे कि अरे इसने तो ज्यादा वैसे पंजाबी में वो काम वाम किया है या जो भी किया है तो ये कैसे हम बॉलीवुड के साथ कनेक्शन बना रहे हैं तो जनाब बॉलीवुड के साथ उनका बहुत गहरा अब जो है वो हो गया है मतलब है प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ गई है तो ही इज जनाब द वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ ठीक है जी आज हम उसके ऊपर बात करेंगे दिलजीत दोसांझ पैदा हुए थे दोसांझ कलान के अंदर जलंधर में टू अ जाट सिख फैमिली ऑन January 6, 1984 और इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिंगर है यानी कि इनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है एक्टर फिल्म प्रोड्यूसर हैं इनके वालिद साहब बलबीर जो हैं वो एम्प्लॉई थे पंजाब रोडवेज की और मदर सुखविंदर कौर जो थी वो होम मेकर थी इनकी एक बहन है दिलजीत की और एक छोटा भाई है तो इनके हालात अच्छे इतने नहीं थे और अभी बहुत ही छोटे थे तो इनका जो अंकल था जो रहते थे लुधियाना में वहां पे ये शिफ्ट हो गए थे उनके घर में बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ज्यादातर इनकी स्कूलिंग और पढ़ा वड़ा इन्होंने जो है वहीं पे पढ़ा है ज्यादातर तो इन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया लेकिन आपको पता ही है कि लेटली कुछ हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम करना शुरू किया अच्छा इन्होंने अपना करियर जो है गाने से शुरू किया था इन्होंने अपना फर्स्ट एल्बम जो है इश्क दा उड्डा अड्डा 2003 में इन्होंने रिलीज किया था विद द फाइन स्टोन कैसेट्स और ये बहुत बड़ी कंपनी है इट इज अ डिवीजन ऑफ टी सीरीज और टी सीरीज तो आपको पता ही है बड़े उन्होंने जो है सिंगर्स इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में तो इस चीज ने हेल्प किया इनको टू मेक द डेब्यू इन एक्चुअली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में यानी एक लड़का जो कि अननोन सा था उसको हेल्प किया ये स्टेपिंग स्टोन बना टी सीरीज उसके लिए और फिर जो है ये इन्होंने गाने गाने शुरू किए और बस जो है चल सो चल पड़ी लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि इनका नाम ओरिजिनली दिलजीत नहीं था दलजीत था तो टी सीरीज वालों ने ही यही जो थे ये फाइन स्टोन कैसेट्स वाले इन्होंने कहा कि भाई तुम अपना नाम दिलजीत करो और फिर उस दिन से फिर इनका नाम जो है दिलजीत पड़ गया ये इतने बड़े अब स्टार बन गए हैं कि अभी रिसेंटली सोशल 50 चार्ट जो होता है बिलबोर्ड का, उसके अंदर इनका 2020 में 11th नंबर पे, सॉरी इनका जो नाम है वो आया था इसमें विद हिज 11th एल्बम गोट, GOAT, आपने उसके गाने सुने होंगे, तो वो जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे ये उसके ऊपर आया. और बहुत सारे जो म्यूजिक चार्ट्स हैं इंक्लूडिंग कनेडियन एल्बम्स चार्ट, यूके एशियन चार्ट्स बाय ऑफिशियल चार्ट्स कंपनी, न्यूजीलैंड हॉट सिंगल्स, उसके अंदर जो हैं इनके गाने जो हैं वो आए हैं और काफी ये मशहूर हो गए हैं, नॉट ओनली एज एक्टर बस सिंगर जो है वो, यानी कि सिंगिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं. स्टार्ट तो उन्होंने सिंगिंग के लिए किया था, फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे अब फिल्मों में भी काम करना चाहिए. और इन्होंने फिल्में जो हैं बहुत बड़ी बड़ी जो उनकी, जिन्होंने के बहुत बिग बिजनेस किया, उसके अंदर था जाट एंड जूलियट 2, सज्जन सिंह रंगरूट, हौसला रख, जाट एंड जूलियट 3, फिर और ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म्स थी हिस्ट्री के अंदर. और फिर उसके बाद और भी कुछ फिल्मों ने अच्छा किया, जैसे कि इतना मेरा जिन्हें मेरा दिल लुटिया, डिस्को सिंह, फिलौरी, सज्जन सिंह रंगरूट, सूरज पे मंगल है, और अमर सिंह चमकीला, जो आपको पता है कि म्यूजिकल ही थी इम्तियाज अली की, तो उसमें. और इस तरह से अच्छा इनको जो दिलजीत को जो रिकग्निशन मिली है वो इनके जो एल्बम आए थे बैक टू बैक पंजाबी म्यूजिक के, जैसे कि स्माइल, चॉकलेट, द नेक्स्ट लेवल, इश्क हो गया, बैक टू बेसिक्स, उसकी वजह से मिला. लोगों ने इनकी आवाज सुनी और इनकी तस्वीर भी जब जिस वक्त लोगों ने देखी तो उनको लगा ये बड़ा क्यूट सा जो है वो है सिख लड़का मुंडा, तो इसको जो है कुछ सुनना चाहिए, देखें कि इसमें कितना टैलेंट है. दिलजीत के फिर उसके बाद सिंगल्स आए, जैसे कि भगत सिंह, जिनको कि उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, और ईगो, और फिर इस तरह से जो है काफी इनके एक रिलीजियस एल्बम सिख के नाम से जो है वो आया था. फिर इनका एक सिंगल आया था बॉडी गार्ड, जिसने कि ग्लोरीफाई किया था फॉल ऑफ लिवियन रेवोल्यूशन. और इनका फिर एक सिंगल जो ट्रैक आया था दिलजीत का, यो यो हनी सिंह, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि हनी सिंह जो है कैसे ड्रग्स में और अल्कोहल वगैरह में, यानी कि जो यंग लड़के होते हैं, नॉट कैटेगोरिकली टैगिंग हिम, लेकिन किस तरह से ये खराब हो जाते हैं जब ये ड्रग्स वगैरह में और इस तरह जाते हैं. और आपको पता ही है कि यो यो हनी सिंह ने फिर बाद में कहा भी कि हाँ मेरा जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो इसी वजह से हुआ कि मैं इन सब चीजों के अंदर जो है वो चला गया था. तो ये जो गाना था ये नंबर वन पे रहा ऑन ऑफिशियल एशियन डाउनलोड चार्ट इन यूएस, जिसको के पब्लिश किया था फिर बीबीसी ने, तो ये उधर गया. और दिलजीत जो हैं वो बहुत जबरदस्त न सिर्फ गाने गाते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, आपको पता ही है, तो बहुत ही फेमस हैं खासतौर के अंदर यंगस्टर्स में. इनके जो अब जो कॉन्सर्ट्स हैं वो बिल्कुल फुली पैक्ड जाते हैं. तो आइए हम आपको इनका एक गाना सुनाते हैं प्यारा सा. बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय जैस्मिन परमार. जैस्मिन परमार आपको बहुत जबरदस्त जो है वो मॉर्गेज की सर्विसेज देती हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्राइवेट, कंस्ट्रक्शन, कैसा भी आपका नीड है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479235659 एंड चांदनी बैंक्वेट हॉल्स, बहुत जबरदस्त इंडोर आउटडोर जो गोल्फ कोर्सेज हैं उनके साथ हैं. तो आप अगर अपने कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट्स, एग्जीबिशंस, कोई भी सेलिब्रेशन आप करना चाहते हैं तो इनके किसी भी इवेंट पे कर सकते हैं. इनका नंबर है 9054588888. और सुल्तान भाई हमारे होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे है. और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के इनके पास असल में जो है ना वो अप्लायंसेज हैं और मार्केट से कम प्राइस पे भी है, तो आप जरूर इनके पास जाइए. इनका नंबर है 9054502828. तो आइए आपको एक दिलजीत दोसांझ का प्यारा सा गाना सुनाते हैं और फिर हम आते हैं वापस.
खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा, नशा नी न जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है दी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी, नैना कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी, तेरी है ना इश्क दे सिर दे रूपों लैना नी, कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी, तेरी है ना इश्क दे सिर दे रूपों लैना नी, कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी,
मन के नशा तो एक सर चढ़ जाए बस फिर तू ही बढ़ाए तू ही गिराए बोल के रख दे तू मेरी चढ़ाए कैसे कहूँ क्या मैं करूँ फील तुझे नहीं पता कि तू कर मुझे ही मुझे जब हाथ लगाए पास तो आए मेरा सर हो मेरा सर यही कर दूँ मैं बेबी योर मोर 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 बेबी योर वाइ 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 उसकी अदाएं वाइ वाइ कैसे समझ आए हाय हाय यू कुड ब्रिंग योर क्रू 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 टेक इट टू द स्काई 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 जो ना करना था मुझे से तू वो ही कराए हाय
नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देख दे रहना नी तेरी है ना इश्क दे इत्र दे रूपो लेना नी
आज तू बता ले मैनू सब सोनी है डिनर पहले के चलू कब सोनी है पतली कमर बेबी मैं तेरा लवर बेबी मुझसे बचा ले तुझे रब सोनी है दुनिया से तेरे पिंक शेड मर जा तेरे आगे सारिया ने पेड़ मर जा फिकर कमाल तू करता बवाल मेरे दिल पे तू मार की है रेड़ मर जा
नैना
दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देख दे रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लेना नी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देख दे रहना नी मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लेना नी नैना दा कहना
जी। तो ये गाना आपने जरूर एंजॉय किया होगा। इनकी फिल्म क्रू जो आई थी बॉलीवुड की उसके अंदर ये थे और उसका ये गाना था। तो इंटरेस्टिंग फिल्म थी, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और इनका एक बड़ा क्यूट इंटरव्यू था जो मैं आपको बताती हूँ। हम्बल हैं बड़े, तो उसमें उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने आपकी बड़ी तारीफ की है और वो कहते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इस वक्त सबसे बड़ा सितारा जो है या वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स जो है वो दिलजीत। तो दिलजीत के एक्सप्रेशन अगर आप इंटरव्यू देखें तो देखने वाले कहते हैं अच्छा जी बड़ी बड़ी गल कहते हैं कि मैं तो अपने आप को इतना बड़ा स्टार नहीं समझता लेकिन अगर जाहिर है कि किंग ऑफ बॉलीवुड ने इनकी तारीफ की है तो जाहिर है कुछ तो इनके होगा। अच्छा, इन्होंने अपना डेब्यू जो किया था पंजाबी मूवी थी द लायन ऑफ पंजाब 2011 में उससे किया था और फिर बॉलीवुड के अंदर दिलजीत ने डेब्यू किया था 2016 में विद उड़दा पंजाब और ये उर्दू बोली थी उसमें, वरना उससे पहले तो ये पंजाबी फिल्म बोलते थे ना, पंजाबी फिल्मों में तो उर्दू में इन्होंने ज्यादातर बातचीत की थी और उसके लिए इनको ये उड़ता पंजाब के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू मिला था और नॉमिनेशंस भी मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने जो है गुड न्यूज में काम किया और उसमें इनको सेकंड नॉमिनेशन मिला फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। इन्होंने विन किए हैं पीटीसी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 5 times और एज अ जज भी अपीयर हुए हैं इन 3 seasons ऑफ रियलिटी शो राइजिंग स्टार। 2024 में इन्होंने अनाउंस किया अपना दिल ल्यूमिनाटी ग्लोबल टूर और उसके सिलसिले में इन्होंने टूर किया है पेरिस, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, नेदरलैंड्स और इंडिया के अंदर अंडर द सेम टूर दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी और इसके अलावा कनाडा जो है काफी दफा ये आए हैं। यहां पे टोरंटो के अंदर और वैंकूवर में भी इनके जो है वो जो टूर्स थे। अच्छा, इन्होंने हिंदी फिल्मों में तो अब काम करना शुरू कर दिया है लेकिन गाने ज्यादा उर्दू में नहीं गाए हैं तो इनका वाहिद जो इनके करियर का उर्दू ट्रैक है दिलजीत का वो रूबरू है। 2023 में अप्रैल में इन्होंने परफॉर्म किया दिलजीत ने एट कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट टू डू सो। इसके बाद फिर इनको बुलाया गया टुनाइट शो विद जिमी फैलन तो अब वहां पे ये बड़े परेशान हो गए, कहते हैं इतनी अच्छी मुझे अंग्रेजी नहीं आती और वहां पे लेकिन जब उसके साथ बैठे तो इन्होंने बड़ा फन किया, आधी इंग्लिश आधी कुछ ऐसे करके मिक्स करके बोलते रहे और खुद भी हंसते रहे अपने ऊपर और कहते रहे मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती और लोगों ने भी बहुत मजा लिया इनकी सिंप्लिसिटी का। सो दिस वॉज इन 2016 और वहां पे काफी इन्होंने लोगों का दिल छू लिया जिस वक्त इन्होंने डिस्कस किया 1914 का ये जो वाकया था कोमागाटा मारू का उसको इन्होंने डिस्कस किया और इन्होंने बताया कि फ्रॉम देयर कैसे फिर सिख जो हैं वो राइज किए, क्या हुआ, इनकी अपनी खुद की स्टोरी बड़ी जो है वो इंस्पायरिंग है, वो खुद मानते नहीं है कि मैं जो है इतना बड़ा स्टार बन सकता हूं। 2025 में फिर इन्होंने डेब्यू किया यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेट गाला और अपने जो ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो किया दिलजीत ने और बहुत ही कस्टम महाराजा एंसेंबल था इनका जिसके अंदर आइवरी कलर की इनकी टर्बन थी, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर हुआ हुआ था और आइवरी केप था और ज्वेलरी थी बड़ी जबरदस्त पहनी हुई और अपना वो जो महाराजा का जो डंडा होता है वो इनके हाथ में, तो मतलब बिल्कुल अपने उस स्टाइल के अंदर जो है ये अपीयर हुए थे और लोगों को बहुत ज्यादा जो है ये इनका ये स्टाइल पसंद आया। अच्छा, इनसे जब भी कभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि दिलजीत तुम जो है वो ये ब्रांड्स वगैरह बड़े पहनते हो, तो वो कहते हैं हाँ जी, अब हमें ये ना कोई समझ ले कि हम बिल्कुल ही जाहिल हैं और हमें ये बिग ब्रांड्स के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसलिए पहन लेता हूं कि लोगों को पता चले कि नहीं सिख भी बड़े फैशनेबल बड़े स्टाइलिश होते हैं और हमें भी पता है बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में। और आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये इतना बड़ा जो सितारा है, मेरे जैसे नाचीज ने इनका कोई अबाउट 10 साल पहले जब ये आए थे वैंकूवर में तो इनका इंटरव्यू भी लिया था एंड ही वाज अ वेरी यू नो काइंड एंड स्वीट बॉय। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था लेकिन मैंने कहा प्लीज 10 मिनट बात करें, तो इन्होंने जरूर की। तो हम आपको इनको इनका दूसरा गाना जो है अभी सुनाते हैं, बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बींग ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स। राजधानी स्वीट्स के 25 जो हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो कहते हैं अगर आपको कोई भी वेजिटेरियन खाना खाना है अच्छा हाई एंड बहुत ही जिसकी अच्छी क्वालिटी है तो आप राजधानी स्वीट्स पे आ सकते हैं। और खाने के अलावा इनकी जो मिठाइयां हैं बहुत ही जबरदस्त हैं, तो अगर आप इनकी मिठाइयां भी एंजॉय करना चाहते हैं जो जाहिर है कि मार्केट से डिफरेंट है क्योंकि अब इतनी बड़ी चेन है तो वो रन ऑफ द मिल टाइप चीजें नहीं बनाएंगे, तो बहुत ही डिफरेंट अगर मिठाइयां भी आप इनकी खाना चाहते हैं तो आप इनके किसी भी 25 रेस्टोरेंट वो कहते हैं जी विच एवर इज नियर यू आप जा सकते हैं। और फिर कुछ लोग जो चटखोरे होते हैं मेरे जैसे जैसे क्रिस्पी चाट्स वगैरह अगर आप खाने चाहते हैं तो वो भी यहां पे होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप rajdhaniswits.ca पे जाके डिटेल्स देख सकते हैं। एंड राजा बादशाह आपको बहुत अच्छी इंश्योरेंस के सर्विसेज देते हैं, ऑल स्टेट के साथ हैं, कैसा भी आपका नीड है 2-4-5 बड़े घर हैं छोटे हैं आपकी गाड़ियां कितनी भी हैं तो आप उनको कॉल कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे। इनका नंबर है 6472903773। डॉक्टर नाजिया रहमान जबरदस्त आपको डेंटिस्ट्री की सर्विसेज देती हैं और कहती हैं कि जी आप कैसे भी दांत हैं तो आप आ जाएं, कैसा भी इंश्योरेंस भी है आपके पास, 2 ब्रैम्पटन में 1 मिसिसागा में इनके क्लिनिक्स हैं, तो आप जरूर जाइए और इनसे बात कीजिए। इनका नंबर है 9058721100। बल्कि जाहिर है कि सर्विस ही इनकी ले ले, बहुत अच्छे आपके दांतों को सर्विस ये करती है। तो आइए एक दूसरा गाना सुनते हैं दिलजीत का और फिर आते हैं जी वापस।
प्यार करदा डू यू नो मैं तेरे उत्ते किन्ना मरदा डू यू नो तेरे लिए मैं सब पिंड छड्डदा डू यू नो तेरे लिए लोकां नाल लड़दा डू यू नो तेरे लिए मुस्तांग ले लई डू यू नो मैं तेरा नाम लिखाया गुट ते डू यू नो जेड़े तेरे पीछे घूमदे डू यू नो मैं कल सारे सारे कुट दे डू यू नो मैं तेरी करे गल कर ले डू यू नो मैं मम्मी मेरे वाल कर ले डू यू नो जब तू किसे नाल खड़ दी डू यू नो मैं तो किन्ना तड़दा डू यू नो मैं तेनू किन्ना प्यार करदा डू यू नो
कम कर छड़े आवा कुछ भी ना पिया
तो ये था जनाब एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना दिलजीत दोसांझ का। और दिलजीत दोसांझ जो है वो उनको जब बॉलीवुड के अंदर जब ऐसे मिला, जब चांस मिला, जैसे पहले उड़ता पंजाब के साथ और फिर क्रू में, तो जब इनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि जब आप जो है अचानक से पंजाबी फिल्मों से जब आप बॉलीवुड में आए और ये जो है इन सितारों के साथ आपने काम किया तो इतने क्यूट हैं ये कहते हैं मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं जो है काम कर रहा हूं आलिया के साथ या कि करीना कपूर के साथ। तो इस तरह से और अपनी जो एक दफा स्टेज परफॉर्मेंस भी दे रहे थे तो उसके ऊपर भी इन्होंने जो है ये बुला लेते हैं अक्सर लोगों को जो है वहां पे बुला लेते हैं, जैसे कि हानिया आमिर जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उनको बुला लिया था इन्होंने, जब उनको देखा तो लोगों को कहा कि भाई स्पॉटलाइट उस पर डालो और फिर उसको अपने स्टेज पे बुला लिया। इसी तरह करीना जो है उनको अपने पास, तो ये बुला लेते हैं जो ऐसे कभी कोई देखते हैं और कुछ ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि यार ये मतलब है कहां से है और जो है इस तरह। तो इसलिए इनके साथ लोग जो है काफी और बिल्कुल सिंपल से अपना कोई लाचा पहन के आ जाते हैं, सिंपल सा कोई ड्रेस पहन के आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कोई वो शोशा नहीं करते हैं, तो इसलिए भी लोग जो हैं इनके साथ बड़ा वो कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, बड़े स्टार्स की तरह ये भी बड़े स्टार हैं और कंट्रोवर्सीज तो ऑफ कोर्स हैं। इनकी जो फिल्म अभी आई थी सरदार जी 3 उसके ऊपर बहुत ज्यादा आउटरेज आ गया था और आपको पता ही है कि उसके ऊपर तो लोगों ने इनको एंटी इंडियन बोल दिया था और गद्दार तक बोल दिया था। और उसका मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि इन्होंने कैस्ट कर लिया था हानिया आमिर को। अब यह हुआ था कि वहां पे जो थे इंडियंस थे उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये पहलगाम का वाकया हुआ है और तुम जो है हानिया को अपनी फिल्मों में ले रहे हो और प्रमोट कर रहे हो और जो है इसको बड़ा एक्यूज किया कि तुम जो नेशनल पॉलिसी है ऑफ बॉयकॉटिंग पाकिस्तानी टैलेंट इन इंडिया तो उसके लिए तुमने क्यों इसको जो है बोलिया। तो उसने कहा जी कि ये पहलगाम का वाकया हुआ नहीं था उस वक्त तक जिस वक्त हमने इसको साइन किया था और उसके बाद ये होया। तो इसमें और वैसे भी एक्टर्स जो होते हैं या सिंगर्स हैं उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो एज अ रिजल्ट एनीवेज ये जो सरदार जी 3 थी फिर ये रिलीज नहीं कर पाए थे इंडिया में और बाकी सारी दुनिया में बहुत अच्छा इनको रिस्पांस आया था। पाकिस्तान में भी ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस तरह तो लेकिन ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। अच्छा फिर अपने 2026 का जो इनका ट्रैक था अरोमा उसके ऊपर भी बेतहाशा बैकलैश आ गया था LGBT प्लस कम्युनिटी की तरफ से क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिरिक्स जो हैं बहुत खराब हैं और वो कंट्रास्ट करते हैं आइडियल मैस्कुलिनिटी को और बहुत ही डेरोगेटरी तुमने जो है रिमार्क्स यूज किए हैं ये जो है LGBT कम्युनिटी और उसके अंदर जो तुमने वर्ड खासतौर पे छक्का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह के गंदे लफ्ज तुमने क्यों इस्तेमाल किए क्योंकि आपको पता ही है कि पंजाबी जो सिंगर्स हैं उनके ऊपर वैसे भी बहुत सारा बैकलैश आता है कि ये लोग क्राइम्स को मारधाड़ को और ड्रग्स को बहुत प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि तुमने इस कम्युनिटी को भी डिसरिस्पेक्ट जो है वो किया है। अच्छा कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर जब दिलजीत गए तो वहां पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े इंडियन फ्लैग्स लेकर आए हुए थे तो इन्होंने उनको कहा कि आप ये इंडियन फ्लैग्स अपने फोल्ड करके अपने पास रख लो, आप ऐसे कर दो और जो है क्योंकि ये जो स्टेज होता है इसके ऊपर इंक्लूसिविटी और पीस फॉर एवरीवन नजर आना चाहिए। अब ये जो था बहुत ही बड़ा ये मुद्दा बना इसलिए कि लोगों ने कहा कि फ्लैग जो है वो तो इंडिया का नेशनल सिंबल है और दिलजीत दोसांझ ने उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। तो फिर उसके ऊपर काफी इनको सामने आके जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट अपने फ्लैग अपने मुल्क के फ्लैग को कैसे कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि वहां पर इंटरनेशनल ऑडियंस थी तो हमको डायवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए और इन चीजों के ऊपर ज्यादा जो है वो मैं ध्यान दे रहा था। अच्छा फिर इनको दिलजीत को ऑनलाइन और भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ गया था क्योंकि एक दफा इन्होंने स्पेलिंग जो है वो पंजाब के डाल दिए थे पंजाब की तरह PANJAB जो कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये इस टाइप के जो स्पेलिंग्स हैं या इस तरह का एक्सेंट जो है वो पाकिस्तानी साइड पे बोला जाता है। और ये हुआ था चंडीगढ़ के जो इनका कॉन्सर्ट था उसमें और उसमें भी बे इंतहा इनकी इनके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म आई। उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हो, अगेन वही वो जो है एंटी जो है तुम इंडिया हो और गद्दार हो। और फिर तो उसके बाद तो हद ही हो गई, खासतौर पे ये जब फिल्म भी आई थी हानिया के साथ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी ये तो खालिस्तानी है और ये है और वो है और बड़े फिर डिग्निटी के साथ दिलजीत ने बहुत ही आराम से यानी कि उसका कहा जी कि मैं तो इंडियन हूं दिल से भी और हमेशा मैं अपने मुल्क के लिए वो करूंगा। और ये अच्छा फिर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म दिलजीत के ऊपर आया कि इन्होंने शूटिंग की थी, एक प्रमोशनल वीडियो अपना बनाया था बंगला साहिब गुरुद्वारा के अंदर दिल्ली के अंदर, और उसमें भी क्रिटिक्स ने कहा था कि ये बहुत ही सेक्रेट किस्म की जगह होती है और यहां पे आप आके फिल्मिंग नहीं कर सकते, खासतौर पर इन साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत ही अनफेयर है कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि ये सारे का सारा इलाका प्रोहिबिटेड होता है और यहां पे रेगुलर डिवोटीज जो होते हैं उन तक को हम जो है वो फिल्में वगैरह जो है वो नहीं बनाने देते हैं, तो तुम चूंकि स्टार हो तो तुम कैसे जो है वो तुमको कैसे ये परमिशन मिला और तुम कैसे आ गए और तुमने ये कैसे किया। भारत जी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो अब इनकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, बेचारे जो भी करते हैं, क्योंकि वैसे भी इजी होता है ना कि कोई भी जो थोड़ा सा भी प्रोमिनेंट हो जाए फिर उसकी टांग तो हमारी कम्युनिटी जरूर खींचती है, वो चाहती नहीं है कि ये लाइम लाइट में रहे ये बंदा, लेकिन जाहिर है उसको इज्जत अल्लाह ने दी है तो आप कैसे अब उसका जिससे जो खींच सकते हैं। हम आपको आज का आखिरी गाना सुनाते हैं, हालांकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि शाजिया जी और गाने सुनाएं, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो ये है कि हाफ एन आवर है और हाफ एन आवर में अगर हमने इतना कुछ उनके बारे में बताना भी है स्टार्स के बारे में तो तीन से ज्यादा गाने नहीं हो सकते, तो मैं आमिर को रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि जिस वक्त ये सेगमेंट खत्म हो जाए तो आपकी पसंद का चाहत का एक अगर कोई और जो है अच्छा गाना अगर उनकी मर्जी है उनका प्रोग्राम है उनका सेगमेंट है अगर दिलजीत का वो गाना लगाना चाहेंगे तो आपके लिए एक और गाना लगा देंगे। अच्छा जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट पे होते हैं फैसल चट्टा साहब, बहुत जबरदस्त जो है इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस आगा एक ओकविल में, तो आप दोनों जगह बैठ के खाना भी खा सकते हैं और आप टेक अवे भी कर सकते हैं, तो आप जरूर इनको कॉल भी कर लीजिए सो दैट यू नो कि इनके क्या स्पेशलिटीज हैं। इनका नंबर है 9052323663 एंड आरिफा मुजफ्फर जी बहुत जबरदस्त आपको रियल एस्टेट के नीड्स जो भी कोई आपके हैं तो आपके पूरे कर सकते हैं, आपको छोटा बड़ा कैसा भी घर चाहिए आप उनको कॉल कर लीजिए विद कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। इनका नंबर है 6478986245 एंड KPNR तंदूरी ग्रिल 11 टॉन्टन रोड ओशवा में है और यहां पे बहुत ही टेस्टी खाने बनाते हैं शेख रशीद साहब, खासतौर पर लाहौर की स्पेशलिटीज आपको यहां पर मिलेंगी तो आप जा सकते हैं। हां संडे को हम बताना चाहते हैं कि पाए का जो है नाश्ता यहां पर होता है तो आप जरूर संडे को जाइए, ज्यादा जानकारी के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 2892400910। तो आइए आज का आखिरी गाना सुनते हैं और फिर आपसे टाटा बाय बाय करेंगे।
अपने ब्याह से वेलता खर्च के रख कर तू
इन की
होर किसे ते डुल गया होने हसू ते अख्या भुल गया होने होर किसे ते डुल गया होने ऐडा नी सुखाला छड़ीदा
तो ये था जनाब हमारा दिलजीत दोसांझ पे आज का शो। और कुछ एक दो बातें जाने से पहले, क्योंकि अब आपके मैसेजेस इतने आ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी और कुछ बातें आपको जो है इनके बारे में बता दें। आपको पता है कि दिलजीत दोसांझ जो है ही इज द फर्स्ट सिख टर्बन सिख और फर्स्ट एशियन जो के यानी के जो पगड़ी बांधते हैं उनका जो है वो बनाया गया है वैक्स स्टैचू इन मैडम टुसॉड्स जो म्यूजियम है लंदन में। तो इससे पहले कभी किसी टर्बन सिख जो है उसका वो नहीं था। एंड ही ऑल्सो इज द ओनली साउथ एशियन आर्टिस्ट, द ओनली, नॉट इवन शाहरुख खान, नॉट अमिताभ बच्चन, नो बडी, ही इज द ओनली एशियन जो है ये आर्टिस्ट हैं जिन्होंने के एक्चुअली जो यूएस के अंदर बेस्ड जितने भी ये बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उसकी इजाजत इनको दी गई थी स्पेसिफिकली कि आप विजिट कर सकते हैं, नो बडी एल्स हैज दिस। तो ऑफकोर्स बात तो बड़ी है, तो मगर बड़ी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। और आप के पास हम ऐसे ही और बड़े बड़े स्टार्स लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए 6:30 to 7 एवरी डे। और अब मैं आपसे मिलूंगी फ्राइडे को तो एक बड़े सितारे के साथ। और अभी मैं बता देती हूँ, आपका सस्पेंस तोड़ ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो मैंने कल भी कहा था कि जो आ रहे थे मैसेजेस के अमिताभ बच्चन साहब पे करें, तो मैंने आपसे वादा किया था, तो वीकेंड पे अब जो है हमारे महानायक अमिताभ बच्चन साहब उनके साथ उनके ऊपर हम जो है वो स्टोरी करेंगे फ्राइडे को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, दिस इज शाजिया मलिक, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे।
प्रिय सारा जी, आपका हमारे साथ शामिल रहने के लिए इंशाल्लाह हमसे फ्राइडे मुलाकात होगी। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778, 416-620-1778। आपका हमारा साथ आज भी तकरीबन 9 बजे तक रहेगा और आप लोगों की खबरें, आप लोगों की कॉल शामिल करेंगे, कुछ खबरें आपके साथ शामिल करेंगे। और जो आप लोग ब्रेकिंग न्यूज अब तक सुन चुके होंगे, आप लोगों जिन लोगों को मालूम है, तो जनाब हम आपको दे देते हैं कि एक बार फिर अमेरिका ने, दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। और ईरान ने भी इस वक्त थोड़ी देर पहले ही ये बयान जारी किया है कि आप नए हुर्मुज को एक बार फिर तमाम जहाजों के लिए, चाहे वो गुड्स ले जा रहे हों या तेल ले जा रहे हों, उनको एक बार फिर जो है वो बंद करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। तो मुझे लगता है ये मामला अभी जल्दी हल नहीं होंगे। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज ये मैसेज कह रहे होते हैं कि जनाब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं मुआहदा, बस अब कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ये न्यूज ब्रेक हो गई थी और तमाम ही मीडिया आउटलेट्स ने इसको ब्रेक कर दिया था कि एक बार फिर अमेरिका ने जो है वो ईरान पर आज दोबारा हमले जो है वो शुरू कर दिए। और ईरान ने भी अपना जो दिफाई निजाम है उसको एक्टिव कर दिया है। इसराइल में भी जो है इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से शहरों में इस वक्त सायरन जो है बजाए जा रहे हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटी यही है कि ईरान भी जो है वो ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए इसराइल के ऊपर या अमेरिकन और डिफरेंट अड्डों पर भी हमला करेगा। और इस वक्त जो भी बयान करंट आया है उस पर ईरानी फौज के जो कमान है उन्होंने कहा है कि जनाब आदना हुर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तमाम बहरी जहाजों के लिए, चाहे वो गुड्स ले जा रहे हों या वो ऑयल ले जा रहे हों, उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये सारी खबरें शामिल करेंगे, आप लोगों की कॉल भी शामिल करेंगे। आज मैंने आपकी बात करानी है मोहम्मद सिद्दीक साहब से, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे इंशाल्लाह। और बस आप लोगों की कॉल का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ हेडलाइंस भी शामिल करेंगे, फाइनेंस बिल पर भी आज बात करेंगे। आज के टॉपिक को फाइनेंस बिल पर भी मैंने आपसे बात करनी है कि एक तरफ तो हुकूमत वक्त पाकिस्तान वो क्लेम कर रहे हैं कि हाईएस्ट अमाउंट जो है वो रेमिटेंस का जो है रिसीव किया है इस साल में, तो ये क्या मामलात हैं। एक तरफ जो है रेमिटेंस ज्यादा भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट कहती है, वफाकी गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के साथ भी मामलात कहा जा रहा है कि वो तय हो गए हैं बजट को लेकर, और जो डिफेंस बजट को लेकर मामलात हो रहे थे जिसपे वफाक ने कहा